वाले दिन हमारे जीवन को एक निश्चित गति दे सकें, इसलिए हम इन 10 दिनों में अपने जीवन को सही दिशा में गतिशील करने का प्रयत्न शुरू करेंगे। ठीक दिशा मिल जाने के बाद उस दिशा में गतिमान होना भी जरूरी है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे चलना जरूरी है, ऐसे ही हमारे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया है, उसको हम आने वाले दिनों में सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हम आज संकल्प करने बैठे हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो तैयार होके निकलते हैं, चेहरा देख लेते हैं, कपड़े संभाल लेते हैं, जिससे मिलने जाना है या जिस काम से जाना है उसको ध्यान में रखते हैं। और अगर अपने शहर से दूसरे शहर की यात्रा करनी हो तो थोड़ी और तैयारी कर लेते हैं, रास्ते में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सब भी सहेज करके पोटली में बांध करके साथ में ले जाते हैं। चाहे किसी भी तरह की तैयारी हो, घर से बाहर जाने की या शहर से बाहर जाने की, या 365 दिन पढ़ के परीक्षा देने की तैयारी हो, या बेटी के बड़े हो जाने पर उसके विवाह की तैयारी हो, सबकी तैयारी बड़े मनोयोग से करनी पड़ती है, बड़ी सावधानी से करनी पड़ती है। अपने जीवन को हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये 10 दिन हमारी उसी तैयारी के दिन हैं। क्रोध आने पर मेरी कोई तैयारी है या नहीं है? मैं क्षमा भाव धारण कर सकूंगा? मेरे भीतर जब अहंकार उत्पन्न होगा तब वो मेरी विनय को नष्ट करने का प्रयत्न करेगा, मेरी उससे बचने की तैयारी है कि नहीं? मेरे अंदर दूसरे के प्रति छल कपट का भाव उत्पन्न होगा तब मैं कैसे अपने उस सरल स्वभाव को बनाए रख सकूंगा? ऐसी कोई तैयारी है? संसार की लोभ लालच जब मुझे घेरेगी तब मैं उस सब के बीच भी अनाशक्त रह सकूंगा? ऐसी भी तैयारी मेरी होनी चाहिए। हमने आज तक इस आंतरिक तैयारी की विशेष कोशिश नहीं की है, बाह्य तैयारियां हमारी है हर बार, बहुत अच्छे से हमने की। बाह्य तैयारी के मतलब यही है कि सुबह से मंदिर जाना है, सुबह से मंदिर जाकर मुझे पूजा करनी है, पूजा करके मुझे जल्दी घर नहीं लौटना है, मुझे देर से लौटना है। क्यों? क्योंकि दिन भर में एक बार ही मुझे भोजन करना है, जल्दी सुबह से कर लूंगा तो दिन भर तो बहुत मुश्किल होगी, इसलिए मैं घर देर से लौटूंगा, आराम से 12 बजे भोजन शुरू करके 1:30-2 बजे तक एक आसना करूंगा, फिर तो शाम तब तक आ ही जाएगी। फिर थोड़े से भीड़ भाड़ के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर मैं अपना मनोरंजन कर लूंगा। पंडित जी आए होंगे तो उनकी सभा में तो क्या होगा, वो 2-4 बातें सुनाएंगे, वो ही सब उत्तम क्षमा गहोरे भाई यही कहेंगे वो, और क्या। इसलिए मैं अपनी बाहरी तैयारी तो इतनी ही कर लेता हूं और हमेशा से करते आया हूं, एक आसना कर लेना और उपवास कर लेना ये सब भी बाह्य तैयारी है, रस परित्याग कर लेना, सब्जी नहीं खाना, दाढ़ी नहीं बनवाना, कपड़े नहीं धोना, नहाना नहीं, चाहे जो कर लो आप, सब बाह्य तैयारी। मेरे अंतरंग में मेरी कषायों को जीतने की और पापों से बचने की तैयारी मुझे इन 10 दिनों में करनी चाहिए, वो बहुत आंतरिक तैयारी। हम देखें कि उस तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। समझना पड़ेगा हमें सबसे पहले कषायों को कि वे हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो हमारी क्या तैयारी है, उनका स्वभाव तो जान लें। अणथोवम बणथोवम अग्गीथोवम कसाय थोवम अभी ऋण जब लिया जाता है तब बहुत थोड़ा ही लिया जाता है, घाव जब होता है तो बहुत छोटा सा होता है, अग्नि की चिंगारी भी बहुत अल्प दिखाई पड़ती है। ये सब जैसे प्रारंभ में बहुत थोड़े होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी सी असावधानी में ये बढ़ करके और बहुत बड़े हो जाते हैं। ऐसी ही कषायें हैं, वे भी प्रारंभ में अल्प जान पड़ती हैं लेकिन पूरे जीवन को नष्ट करने वाली हैं, ये उनका स्वभाव। हम सोचते हैं कि हमने किसी से 4 आने पैसे उधार ही तो लिए हैं, चुका दूंगा, लेकिन वे 4 आने पैसे नहीं चुक पाते, पूरी जिंदगी हिसाब बढ़ता ही चला जाता है। उधार लेने वाले किसान से पूछो, वो जितना उधार लेता है उसका ब्याज तक पूरी जिंदगी नहीं चुका पाता, मूलधन की तो बात ही है। और हमारे शरीर में कोई छोटा मोटा चोट लगने से घाव हो जाता है, हम अगर थोड़ी असावधानी कर दें तो वो घाव बड़ा होकर के नासूर बन सकता है, और हो सकता है कि जिस जगह पर वो हो उस पूरी जगह को ही नष्ट कर। अग्नि की छोटी सी चिंगारी हमारे देखते देखते हवा पा करके और महल को भी जला करके राख कर देती है। कषायों की तासीर भी ऐसी, वे अल्प दिखाई देती हैं लेकिन बढ़ करके बहुत हो जाती हैं। जैसे कि वट वृक्ष का बीज बहुत छोटा सा दिखाई पड़ता है लेकिन उससे जमीन हवा पानी और मिट्टी मिल जाने पर वो बढ़ करके और बहुत बड़े हिस्से को जमीन के घेर ले जाता है। सिरेन से डॉक्टर हमारे अंदर जरा से छेद से कितनी सारी दवाई भीतर डाल देता है, छेद कितना सा है, बहुत बारीक सा है। ऐसे ही हैं ये कशाएं, एक बार हमारे भीतर अगर ये किसी माध्यम से प्रवेश पा जाती हैं तब ये अपना बहुत विस्तार कर लेते हैं। हमें इनके स्वभाव को जान करके ही अपनी तैयारी करनी चाहिए। अनादिकाल से हमारे भीतर इनका प्रवेश हो चुका है संस्कार की तरह। उस संस्कार के चलते हमारी मनोवृत्ति भी परिवर्तित होती रहती है, वातावरण उसे प्रभावित करता है और वर्तमान का जो हमारा कर्म है वह भी इसके लिए जिम्मेदार है। इन चारों चीजों को अगर हम ठीक समझ लेंगे तो ही हम बच पाएंगे इन कषायों से। विशेष रूप से आज क्रोध कषाय से बचने के लिए हमें विचार करना होगा। क्षमा हमारा स्वभाव है और उससे विपरीत क्रोध है। क्रोध के अभाव का नाम ही क्षमा है, वो हमारा अपना स्वभाव है। उसे हमें कहीं से अन्यत्र से अपने भीतर लाना नहीं है, बस इतना ही करना है कि उससे विपरीत मैं ना जाऊं, मैं क्रोध में ना जाऊं, तो क्षमा तो मेरी अपनी स्वाभाविक अवस्था है। अपन सामान्य रूप से क्षमा का अर्थ क्या लेते हैं, गुस्सा आ जावे तो क्षमा करते हैं। नहीं, क्रोध ही ना आना वास्तव में तो क्षमा यही है। क्रोध आ जाने के बाद फिर क्षमा करना, वो अपनी उस कमजोरी को थोड़ा सा कम करने का माध्यम है। पर वास्तव में तैयारी तो हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा अपना स्वभाव जो क्षमा का है वो बना रहे और क्रोध उत्पन्न हो जावे तब फिर क्या किया जाए, इस पर हम विचार कर सकते हैं। उत्पन्न होता कैसे है ये भी देखना पड़ेगा। संस्कारों से उत्पन्न होता है, जैसी जिसकी मनोवृत्ति है उसके अनुसार होता है, वातावरण के अनुसार भी और हमारे अपने वर्तमान के कर्म के अनुसार। अंतरंग और बहिरंग दोनों इसमें कारण हैं। उन कारणों पर हम विचार करें और उन कारणों से बचने का पुरुषार्थ करें तो हम आसानी से अपने उस क्षमा भाव को बनाए रख सकते हैं। संस्कार क्या चीज है, हमारी अपनी अनादिकाल की जो आदत है वही हमारा संस्कार है। आदत तो ये है कि मेरे अनुसार सब कुछ हो, कम से कम जिन्हें मैं अपना मानता हूं वे तो मेरे अनुसार ही चले। अब अगर वे मेरे अनुसार नहीं चलते हैं तो मेरे मन में कलुषता आती है, उस कलुषता का नाम भी तो क्रोध। हमें जितनी अपेक्षाएं हैं उतना ही हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होगा। ये संस्कार हमारा हमें इसी तरफ ले जाने वाला है। संस्कारवश हम अपेक्षाएं करते हैं और वे अपेक्षाएं हमें क्रोध में ले जाए। सबके अंदर यही एक संस्कार, एक आदत बनी हुई है जिनसे हमारे मन में लगाव होता है, उनसे हमारी अपेक्षाएं बहुत हैं। जैसे कि हमारा बेटा है तो हमारे बेटे से हमें अपेक्षा होती है कि पढ़ लिख करके होशियार बने, और अगर वो बुद्धू निकल जाए तो क्या लगता है? गुस्सा आता है, क्रोध आता है। बाजू वाले का बेटा बुद्धू रहा आवे, मुझे कोई उससे गुस्सा नहीं आता। मेरा बेटा, मुझे उससे अपेक्षा थी कि बुद्धिमान बनेगा, लेकिन बुद्धू निकल गया, पढ़ता ही लिखता नहीं है। पढ़ता लिखता भी है मान लो तो कम ही नंबर लाता है। अपने पुत्र से मेरी अपेक्षाएं, मुझे अपने पुत्र के प्रति क्रोध उत्पन्न। जिन के प्रति मैं जो अपेक्षा रखता हूं, उस अपेक्षा की पूर्ति नहीं होने पर मैं फिर क्रोध में गिर जाता हूं, अपने क्षमा भाव से विचलित। क्या किया जाए? आदतों कुछ मेरे से अपेक्षा रखता होगा, उसकी अपनी सामर्थ्य भी है। मैं उसकी सामर्थ्य से अधिक उससे अपेक्षा रखूं तो वो कैसे पूरी कर सकेगा? और फिर उसके मन में जाने क्या चीज है, मैं तो यह जानता नहीं। उसने अपने मन का किया होगा, मेरे मन का नहीं हुआ, पर उसके मन का हुआ है। यदि उसे उसमें ही प्रसन्नता